नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संगीत विषयक व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है ठाकुर जयदेव सिंह का भारतीय संगीत जगत को अवदान। श्रद्धेय ठाकुर जयदेव सिंह ने अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से भारतीय संगीत जगत को उपकृत एवं समृद्ध किया। संगीत, दर्शन एवं साहित्य उनके प्रमुख कार्य क्षेत्र रहे। इन तीनों क्षेत्रों में उनके आलेखन, व्याख्यान एवं संपादन की विविध कृतियां प्रकाशित और प्रकाशित एवं प्रकाशनाधीन रूपों में विद्यमान है। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि उनका निजी संकलन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उपलब्ध है, जिसमें लगभग 1100 ग्रंथ हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियन एंड इथिक्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म एवं संगीत रत्नाकर के कई संस्करण उपलब्ध हैं। संगीत क्षेत्र में तो शास्त्र, प्रयोग, प्रचार प्रसार, संरक्षण, तत्संबंधी नीति निर्धारण, परिचर्चाएं तथा संगीत कलाकारों के से साक्षात इत्यादि विधाओं में उनके रचनात्मक योगदान सराहनीय हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र उनकी रचनाओं का एक संकलन संगीत साहित्य दर्शन शीर्षक से शीघ्र प्रकाशित करने जा रहा है, जिसका आधे से अधिक भाग संगीत विषयक है। आज के इस विषय पर प्रकाश डालेंगी डॉक्टर उर्मिला शर्मा जी। संस्कृत में वेदांत, व्याकरण एवं वैश्विक आध्यात्म डॉक्टर उर्मिला शर्मा जी का अपना क्षेत्र रहा है। इनका प्रशिक्षण प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी के सान्निध्य एवं संरक्षण में हुई। उन्होंने अनेक भारतीय भाषाओं जैसे बंगला, गुजराती, मराठी, अवधी, असमी इत्यादि से कई कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंतर्गत इन्होंने डॉक्टर प्रेमलता शर्मा जी के साथ संस्कृत वाङ्मय के दो प्रमुख ग्रंथों श्री भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि का पाठ संशोधनात्मक संपादन एवं हिंदी अनुवाद सम्पन्न किया, जिनमें से पहला भाग दो खंडों में प्रकाशित हो चुका है और दूसरा शीघ्र प्रकाशित होने वाला है। आज का यह व्याख्यान अधिक महत्वपूर्ण इसीलिए भी है कि डॉक्टर उर्मिला शर्मा जी प्रकाशनाधीन संगीत साहित्य दर्शन की संपादिका हैं एवं पिछले एक दशक से ठाकुर जयदेव सिंह की कृतियों के अध्ययन से जुड़ी हुई हैं। मैं अनुरोध करता हूँ वे स्टेज पे हैं और अपना वक्तव्य दें। मैं डॉक्टर नारायण दत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि उनके फूल के गुच्छों से उनका स्वागत करें।
प्रणाम। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतात् अधोक्षजे आवेश्यताम् नो मतिरपि अहैतुकी। सबसे पहले स्मरण करती हूँ एवं प्रणाम निवेदित करती हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिनकी दृष्टि की सृष्टि है, उन श्रद्धेया बहन जी कपिला जी को। वे ही अध्यक्षा हैं, क्योंकि अधि भीतर रहते हुए वे सब देख रही हैं और बुलवा रही हैं। पुनः प्रणाम करती हूँ। यहाँ पधारे वरिष्ठ विद्वद्गण को एवं इस आयोजन के सभी प्रेरकों को प्रणाम। आज का विषय तो बताया। ये मेरा सौभाग्य है कि श्रद्धेया प्रेमलता शर्मा जी की अनुजा और छाया होने के नाते उनके सब कार्यों में सहवर्तिनी होने का अवसर मुझे मिला। संभवतः उसी कारण ठाकुर जयदेव सिंह जी से भी प्रत्यक्ष अनेक बार मिलने का सह सत्संग का अवसर हुआ। आज का विषय है उनका संगीत संबंधी योगदान। वैसे तो जैसा कि अभी बताया ही गया, उनके प्रमुख विषय संगीत, दर्शन एवं साहित्य रहे, जिसमें कि प्रारंभ दर्शन से हुआ था, फिर साहित्य और अंत में संगीत। किंतु ये संगीत ही उनका प्रमुख योगदान का क्षेत्र हो गया और सारे भारत में संगीत के मर्मज्ञ होते हुए और संगीत कलाकारों के प्रोत्साहन तथा संगीत की विविध विधाओं के सूक्ष्म अध्ययन का उनका कार्य बना रहा। इसीलिए उनके ग्रंथों में और खास तौर से अभी अंतिम जो चल रहा है उसमें अधिकांश भाग संगीत का ही है। और ये भी एक योगायोग है कि स्वयं वे जब तक सदेह थे तब तक तो उनके दर्शन एवं साहित्य संबंधी ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, किंतु संगीत संबंधी उनके योगदान का प्रकाशन उनके रहते प्रायः नहीं हो पाया था। छुटपुट लेखों के रूप में अवश्य था, व्याख्यानों के रूप में अवश्य था और संयोजनों के रूप में अवश्य था, किंतु प्रकाशन नहीं हो पाया था। और उनकी शताब्दी 1993 में जो बहन जी ने मनाई, एक अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में उनकी शताब्दी का आयोजन किया था बहन जी ने, और उसके तुरंत बाद ही सबसे पहले भारतीय संगीत का इतिहास नाम से उनका अपना लिखा हुआ एक ग्रंथ जो महान था, बड़ा था, उसको बहन जी ने ही उसी के लिए संगीत रिसर्च एकेडमी कलकत्ता में संगीत परिदर्शिनी ग्रंथमाला का निर्माण किया और उसके प्रथम पुष्प के रूप में भारतीय संगीत का इतिहास ये ग्रंथ निकाला गया। ये उसका दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण समाप्त हो चुका है। ये संगीत रिसर्च एकेडमी से निकाला गया था, अब उसका दूसरा संस्करण विश्वविद्यालय प्रकाशन ने निकाला है कंप्यूटर के द्वारा। उसी के तुरंत बाद इंडियन म्यूजिक नाम से जो ठाकुर साहब ने लिख के रखा था किंतु अभी संभवतः पूर्ण नहीं हो पाया था, ये भी पूर्ण नहीं हो पाया था कि इतना भारी लेखन था, उसको फिर उसमें से निकालते हुए संभाल के और उसका संपूर्ण अंश को ही व्यवस्थित करके इन दोनों ग्रंथों के रूप में निकाला गया। ये दोनों ग्रंथ वास्तव में एक दूसरे का अनुवाद नहीं है, यद्यपि इतिहास परक हैं किंतु सर्वथा भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं। एक क्योंकि जितना बड़ा उनका व्यक्तित्व था, उसका व्यक्तित्व का परिचय देने में अथवा संगीत संबंधी उनका परिचय देने में यदि केवल मौखिक रूप से कहा जाएगा तो समय अधिक लग जाएगा। आप सबके समय की यानी अधिक उसका सदुपयोग करते हुए मैं लिखित रूप में बता देती हूँ कि क्या क्या उनका अवदान रहे। संगीत शास्त्र के मूल ग्रंथों के आधार पर संगीत के दर्शन, संगीत में दर्शन और संगीत तथा दर्शन के संबंध, परस्पर संबंध पर विश्लेषणात्मक अध्ययन उन्होंने विशेष रूप से किया और सरल सुलभ भाषा में उसको अभिव्यक्त भी किया। संगीत क्षेत्र की प्रायः सभी दिशाओं में संचार, विचार एवं प्रचार किया। प्रायः सभी उसमें भी इतिहास, विकास, ह्रास, सिद्धांत, प्रयोग, वर्गीकरण, शोध की चुनौतियां, शोध की परिस्थितियां और आधुनिक युग की सुविधाओं तथा यंत्रों का संगीत क्षेत्र में विधेयात्मक योगदान और हानियां, साथ ही चुनौतियां, भारतीय दृष्टि से संगीत ने गायन वादन नृत्य तथा नाट्य का परस्पर समन्वित रूप ये सब उन्होंने प्रकट किया। स्वयं उनके द्वारा अपने विषय में लिखे हुए जो जीवन यात्रा के रूप में उन्होंने एक बार कुछ बोल दिया था उसको लिखित रूप में देखा तो देखा कि 1925 से लेकर 1925 में पहले वो ग्वालियर गए थे, वहाँ नानू भैया तैलंग का गायन सुना और उस गायन से ही प्रभावित होकर, क्योंकि संगीत रसिक वो पहले से ही थे किंतु सीधे सीधे संगीत में प्रवेश नहीं हुआ था, उनको वो ग्वालियर से कानपुर ले आए और कानपुर में, क्योंकि जहाँ उस समय वे स्वयं काम कर रहे थे, उनसे सीखना प्रारंभ किया। 1925 से 1932 तक संगीत सीखते रहे नानू भाई तैलंग से और अच्छा गाने भी लगे, किंतु 1932 में मेनिन्जाइटिस होने से उनका गला बंद हो गया सर्वथा, यानी बोलना भी संभव नहीं था, गाना तो दूर की बात है। किसी प्रकार से उपचार के बाद बोलना तो प्रारंभ हो गया किंतु गाना लगभग समाप्त हुआ। इस समाप्त होने पर भी, क्योंकि भीतर संस्कार था और यह विवक्षा पर निर्भर करता है, व्यक्ति की विवक्षा पर निर्भर करता है कि अपनी अभिव्यक्ति वो कैसे करें, तो हुआ ये कि व्याख्यान तो चलते रहे किंतु व्याख्यानों में कभी कभी सस्वर उसका उदाहरण भी वो दे देते थे, उस रूप में उनका गायन कभी कभी होता था। नानू भाई तैलंग के बाद उन्होंने भातखंडे जी से सीधा सीखा था और रतन जंकर जी से भी सीखा था। रतन जंकर उनके सीधे गुरु थे और उनके द्वारा ही भातखंडे जी के पास पहुंचे थे और दोनों से सीखा भी था, उसका प्रयोग भी किया था किंतु सीमित रूप में। अच्छा, 1932 में कश्मीर गए, वहाँ एक जर्मन ने उनको एक लहना दे दिया। हुआ था कि उस समय वो पढ़ाते थे, यानी फिलोसफी पढ़ाते थे, दर्शन ही पढ़ाते थे, किंतु दर्शन पढ़ाते थे वो राधा कृष्ण जी के ग्रंथ के आधार पर। तो जर्मन व्यक्ति ने उनको उलाहना दिया, कितने शर्म की बात है, आप भारत में रहकर मूल संस्कृत जिसमें दर्शन है, दर्शन का मूल जो है उसमें वो उसके द्वारा आप न पढ़ाते, मूल ग्रंथों के द्वारा न पढ़ा के आप अंग्रेजी के आधार पर पढ़ाते हैं। वो बात लग गई और तब से उन्होंने सबसे पहले उसको लगा तो संस्कृत सीखी, संस्कृत में एम ए किया और फिर ग्रंथों का अध्ययन का, तब से लेकर अंतिम समय तक वो हमेशा विद्यार्थी रूप में बने रहे। कितनी भाषाएं, कितनी चीज़ें, कभी भी उनका विद्यार्थीपना छूटा नहीं और वो हमेशा ही विद्यार्थी बने रहे। अध्यापक तो थे ही, विद्वान तो वो थे ही, किंतु उन्होंने विद्वत्ता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था और हर समय वो विद्यार्थी वाले सरल सुलभ भाव से ग्रहण 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 करते हुए उसका संप्रदान करते रहे। कानपुर में ही 1927 में संगीत समाज की स्थापना की थी। प्रत्येक मास में संगीत की चर्चा होती थी, संगीत की बैठक होती थी, संगीत के गायक वादक बाहर से आमंत्रित किए जाते थे, गायन होता था। प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय संगीत परिषद प्रारंभ कर दी। 17 वर्ष तक संगीत परिषद कानपुर में चलती रही जिसमें भारत के जितने प्रसिद्ध गायक और वादक थे सब लोग सम्मिलित होते रहे। 1945 में लखीमपुर गए, वहाँ प्राचार्य रूप में थे किंतु प्राचार्य रूप का जो अन्य विषयों में योगदान था वो तो किया ही किंतु साथ साथ संगीत का बढ़ावा करते ही रहे। 1955 में वहाँ जब अखिल भारतीय संगीत शिक्षकों का सम्मेलन हुआ उसमें सूचना प्रसारण मंत्री बीवी केसकर जी आए। केसकर जी ने जब इनका संगीत की समस्याओं पर व्याख्यान सुना तो उन्होंने कहा कि आप ऑल इंडिया रेडियो में आइए। तो रिटायर हो गए, एक साल रिटायर होने बचा था, रिटायर होकर वो ऑल इंडिया रेडियो में 1956 में चले गए और वो एक स्थान ऐसा था जिससे कि संपूर्ण भारत के और भारत संबंधी अन्य देशों के भी समस्त संगीत क्षेत्र से उनका संबंध जुड़ा और संगीत का उपघात तब से उन्होंने प्रारंभ किया। ऑल इंडिया रेडियो में चीफ प्रोड्यूसर हिंदुस्तानी म्यूजिक के पद पर वो थे, बिना किसी, केवल जवानी ही, उस समय तो आवेदन पत्र की आवश्यकता नहीं होती थी केसकर साहब के कहने के कारण, और रतन जंकर जी से पहले जुड़ ही चुके थे। 1961 में भारत के 25 गायक वादकों को लेकर जापान गए और जहाँ पर संगीत की चर्चा के साथ गायन वादन भी होता रहा। 1961 में वहाँ से लौटकर 62 में ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर होकर 1964 में बनारस में स्थिर होकर रह गए। तब तक भी लिखना प्रारंभ नहीं किया था, व्याख्यान हो रहे थे लेकिन लिखना प्रारंभ नहीं किया था, क्योंकि उनके शब्दों में जब तक ज्ञान पक ना जाए तब तक लेखनी नहीं उठानी चाहिए। 1963 से लिखना प्रारंभ किया, पहले लक्ष्मण जी से शैव दर्शन पढ़ा तो प्रत्यभिज्ञा हृदय का अनुवाद हुआ इत्यादि इत्यादि हुआ, उसमें हमें जाना नहीं है। किंतु जैसा कि मैंने पहले कहा था, पहले दर्शन ग्रंथों का काम हुआ, फिर कबीर की वाणी पर काम हुआ, उसके बाद ये साथ साथ लिखना और शोध कार्य संगीत का चलता रहा। संगीत नाटक एकेडमी के आजीवन रत्न सदस्य वो थे ही, और विविध यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि उनको संगीत के आधार पर ही अधिकतर दी थी, जिसमें कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ इत्यादि ने उनको डीलिट की, संगीत में डीलिट की मानद उपाधियां दी थी। तानसेन सम्मान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान विशेष के समस्त सम्मान उनको, ये सम्मान वास्तव में खुद सम्मानित होते रहे उनको मिलकर। फिर कविराज जी से संपर्क आया, उनके शब्दों में कविराज जी मेरे लिए विश्वनाथ और गंगा वे ही थे। कविराज जी से जुड़कर इधर साधना पथ, उधर दर्शन पथ, उधर कबीर और साथ साथ संगीत चलता रहा। आकाशवाणी में हिंदुस्तानी म्यूजिक के चीफ प्रोड्यूसर पद पर रहते हुए वंदे मातरम, मंगल शहनाई वादन, शास्त्रीय संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो संगीत सम्मेलन आदि परंपराओं को प्रारंभ किया और चलती रहे ऐसी योजना कर दी। राग रचना और रचनाकारों की कृतियों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखने के आकाशवाणी के टेप संग्रहालय, वाद्य यंत्रों के भंडार और संगीत कोष बनवाते रहे। ग्वालियर का तानसेन समारोह भी इनके ही प्रयास से प्रारंभ हुआ था जो चल रहा है। 27 मई 1986 को सदेह तो बीच में नहीं रहे, किंतु तब तक संगीत पर संबंधी भी इतना लेखन और ध्वनियंकित वाणी हमें प्राप्त हो चुकी थी। और बहन जी से ही जाने से कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा था कि वापस आ जाइए बनारस, क्योंकि उस समय बहन जी खैरागढ़ जा चुकी थी, कहा कि वापस आ जाइए, और बहन जी लौट आई। उसके बाद फिर उनके सब जितना संगीत संबंधी उन्होंने कार्य किया था, लेखन का कार्य किया था, वो फिर बहन जी को एक प्रकार से सौंप दिया गया था और तब उनका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दो ग्रंथ तो उस रूप में प्रकाशित हो गए। उसके बाद जो उनके छिटपुट लेख थे और अनेक प्रकीर्ण विषयों पर दिए हुए व्याख्यान थे, जो कैसेट रूप में उपलब्ध नहीं थे, असल में जगह जगह बिखरे हुए रखे थे। विविध पत्रिकाओं में उनके लेख थे, स्मरणिकाओं में लेख थे, कुछ पत्रक आदि में, पैम्फलेट्स आदि में पड़े हुए थे, कुछ ग्रंथों के भूमिकाओं के रूप में थे। तो वो सब, और सबसे बड़ी चीज़ थी बहुत बड़े वरिष्ठ कलाकारों से सुनी हुई दुर्लभ बंदिशों के खुद अपने हाथ से लिखे हुए स्वरलिपिबद्ध रूप बहुत सारा इकट्ठा किया था उन्होंने, और वो प्राचीन नोटेशन में है। बहुत सारे इतना बड़ा, यानी उनका हाथ का लिखा हुआ लगभग इतना ऊंचा संग्रह हमारे पास है, जो बिल्कुल दुर्लभ बंदिशों का संग्रह है। और वो कोई 90 साल की नेपाल की एक महिला थी, उनको जो कुछ याद था उनसे ले लिया, और जन जन के पास था सबसे लेते गए। फैयाज खां साहब के वो विशेष अनुरागी थे, क्योंकि फैयाज खां साहब से उनका बहुत निकट का संबंध रहा था। उनका अन्ना जी के साथ तो था ही, कि फैयाज खां जी के साथ भी था, बड़े गुलाम अली जी के साथ भी था, और
उन सब के संस्मरण भी उनके वाणी में बहुत सारे आए हैं और कुछ लिखित रूप में भी हैं। तो उन सब जो ये जो अलग अलग बिखरे हुए चिंतन बिंदु इत्यादि उनके थे, उनको उनकी बहन के पौत्र, क्योंकि वे खुद और उनकी एक बड़ी बहन थी, वो दोनों ही अपने पिता की जीवित संतान थे, तो बहन का जो परिवार था वो ही इनका पौत्र परिवार एक प्रकार से कहलाया। उनमें से ही एक संजय सिंह हैं, जिन्होंने ठाकुर साहब के जाने के बाद पूरे भारत में घूम घूम के और जहाँ जहाँ संभव था वहाँ वहाँ से उनकी वाणी का संग्रह किया। वो संग्रह जब संग्रह देकर यहाँ कपिला बहन जी से बात की कि ऐसा ऐसा संग्रह इकट्ठा हुआ है, और कपिला बहन जी के संरक्षण से ही और प्रेरणा से ही वास्तव में काम हुआ था, तो उसका संग्रह जो संबंध हुआ वो लगभग 1995 तक वो संग्रह हो गया था, जिसमें 36 ध्वनिंकित कैसेट में 105 व्याख्यान, 90 बड़े 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 छोटे अनेक प्रकार के आलेख, निबंध, पत्रक आदि, और अपने हाथ की लिखी हुई 102 पुस्तिकाएं, ये सब उन्होंने संग्रह करके दिया। तब फिर विचार किया गया कि इसको किस प्रकार से प्रकाश में लाया जाए, तो उन सब का एक व्यवस्थित, उसमें से जो नोटेशंस हैं उनको अलग रखते हुए बाकी जितना लिखित संग्रह लिखित और जितनी ध्वनिंकित सामग्री थी उसको फिर लिपिकरण उसका किया गया हमारे द्वारा, और वो सब करके संगीत साहित्य दर्शन नाम से वो एक संग्रह अब प्रकाशित होने वाला है। अधिकांश कार्य उसका हो चुका है, बस कभी भी एक आध साल के अंदर वो बाहर आ जाएगा। अब उसकी सूची थोड़ी पढ़ दूं और इन दोनों ग्रंथों का परिचय अगर दे दूं तो वही वास्तव में उनके संगीत का जो संगीत संबंधी योगदान है उससे सामने आ जाएगा कि क्या क्या वो कर गए और क्या क्या करने के लिए कह गए। इसमें जो इंडियन म्यूजिक था इसमें 370 संगीतकारों के प्रत्यक्ष, कुछ से प्रत्यक्ष संबंध, कुछ का ऐतिहासिक संबंध लेते हुए 370 संगीतकारों का, जो जिसमें केवल भारत ही नहीं, भारत, अरब और मध्यस्थ देशों के, लेकिन जो भारतीय परंपरा के आधार पर जो संगीतकार थे उनका सबका परिचय उन्होंने दिया है और उनके जीवन और कृतित्व के विषय में लेखन छोड़ा है। और संगीत, ये इंडियन म्यूजिक में तो उन्होंने संक्षेप में सिद्धांत का परिचय दिया है, किंतु संगीत इतिहास में उन्होंने विस्तार से वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक का लगभग संग्रह किया है, और उसमें संगीत की पारिभाषिक शब्दों का भी, पारिभाषिक परिभाषाओं का भी व्याख्यान किया है, अपनी दृष्टि से उसको देखा है और उसका संधान बताया है, और शोधात्मक शोध के लिए बहुत सारे संभावनाएं छोड़ दी हैं कि क्या क्या शोध किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। और अब जो प्रकाशित होगा उसमें उसके विभाजन हमने किए हैं, क्योंकि सीधे सीधे कैसे कहा जाता तो इतना ज्यादा व्यापक क्षेत्र था, इसलिए उसके हमने पांच विभाग बनाए। एक में है संगीत परक, संगीत परक विभाग में इतिहास और विकास, पारिभाषिक चिंतन, संगीत शिक्षण एवं विविध, संगीत कार एवं रसिक, भेंट वार्ताओं में व्यक्त चिंतन, इस रूप में इन पांच विभागों में संगीत विषयक सामग्री है, जो पूरे पूरे इस ग्रंथ का, जो ग्रंथ लगभग 1300 पृष्ठों में आने वाला है, इसमें से 800 पृष्ठ ये संगीत संबंधी हैं, 800 से कुछ अधिक हैं। फिर परिशिष्ट में पुनः उन्होंने बहुत सारी डिक्शनरीज से लेकर अपने एक नोट्स जैसे बना रखे थे, और नोट्स में भी सामग्री इतनी सारी है कि वो विद्यार्थियों के बहुत काम आएगी, इसलिए उसका भी संग्रह इसमें कर लिया गया है। इसमें कुल मिला के लगभग 900 से ऊपर संगीत परक सामग्री है और बाकी दर्शन और साहित्य परक सामग्री है। संगीत में, संगीत के इतिहास और विकास में भारतीय संगीत की परंपरा, भारतीय संगीत के चार प्रारूप, भारतीय संगीत का विकास, ऐतिहासिक दृष्टि, आधार और इतिहास, अतीत और वर्तमान, विशिष्ट और व्यापक, संगीत की विशिष्टता और व्यापकता, भारतीय संगीत की विशिष्टता और व्यापकता, फिर भारतीय संगीत के गत 50 वर्षों की स्थिति, गत अर्ध शताब्दी में शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की प्रगति और ह्रास, उत्तर प्रदेश में संगीत का विकास इतिहास, फिर संगीत गोष्ठियाँ, अंग्रेजी कंसर्टों के अनुसार पर, लेकिन अपनी गोष्ठी की क्या स्थिति है और क्या होता रहा है, क्या हो रहा है, क्या संभावनाएं हैं, फिर संगीत और नृत्य कला पर भी बात की है, समकालीन संस्कृति और शास्त्रीय संगीत पर भी बात की है, भारतीय संगीत के नए दौर पर भी बात की है, सामवेदिक संगीत पर अच्छी तरह से बात की है, और दूसरा खंड है पारिभाषिक चिंतन। इसमें साम से संगीत का संबंध, वैदिक स्वरलिपि, मूर्छना, गांधर्व, श्रुति और मूर्छना, वर्ण अलंकार, संगीत में स्वर और लय, गीत, संगीत में काकू का स्थान, राग के दो रूप, राग ध्यान और चित्र, कला, संगीत और नाट्य में भाव और रस, राग लय और रस, ध्रुपद और प्रबंध का विश्लेषण, ध्रुपद का विकास और ह्रास, ख्याल का विकास और उसके बनते बिगड़ते रूप, घराना और तान, ठुमरी का उद्भव और विकास, ठुमरी प्राचीन और नवीन का विश्लेषण, फिर संगीत शैलियों का विश्लेषण, पक्की गायकी और सिनेमा मित्र गोष्ठी और सिनेमा, इन दोनों का परस्पर क्या घालमेल हो रहा है, इस पर भी बात की है, मित्र गोष्ठी में चर्चा हुई है, संगीत रसिकों के साथ विचार विमर्श प्रश्नोत्तर रूप में, इसमें बड़े गुलाम अली खां के साथ और सीताराम शरण सिंह के साथ और फैयाज खान जी के साथ, इन सब के साथ चर्चाओं का उनका एक लेख है। फिर स्केल, ये तो स्वरलिपि की बात है, ये सब रागालप्ति, रूपकालप्ति, फिर राग लक्षण और रागों का मूल स्वरूप, ये व्याख्यान उनके कभी हिंदी में है कभी अंग्रेजी में है, और दोनों में ही पर कभी भी, जैसा कि जो जीवित कलाकार है, सदा जीवित कलाकार है, मैं अन्य अर्थों में कह रही हूँ, सदा जीने वाला, जिसके अंदर कला जी रही है, वो कभी भी जो भी बोलेगा तो कभी भी एक वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जब आएगा तब नया ही आएगा। फिर संगीत शिक्षण एवं विविध, इस विषय में, इस धारा के अंतर्गत आधुनिक समय के अनुकूल संगीत की शिक्षा, सुगम संगीत और भाव प्रदर्शन, संगीत का भावमय रूप, संगीत और भावना, कला रूप में संगीत का जीवन में स्थान, संगीत और कला के क्षेत्र में एकता और सांप्रदायिक भावना, संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति का त्रिवेणी संगम संगीत, इल्म और फन के दासाय में बनारस, फिर अंग्रेजी में भी टीचिंग म्यूजिक ओवर द रेडियो, म्यूजिक एंड साइंस स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म, इंडियन म्यूजिक इनसाइट्स, होली एंड होल लाइफ थ्रू आर्ट, पैट्रोनेज ऑफ म्यूजिक इन इंडिया, प्रेजेंटिंग द ईस्टर्न ट्रेडिशन अंडर कंडीशंस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, चैलेंज टू ट्रेडिशनल्स और ट्रेडिशंस ऑफ म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक फेसिंग इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, म्यूजिक इन द टेक्नोलॉजिकल एरा, इंडियन म्यूजिक टूडे, और एक उनका लेखों का विषय रहा है, लेखों का व्याख्यानों का, संगीतकार और रसिक, इसमें पुरंदर दास जी का परिचय और कृतित्व, तानसेन जी का परिचय और कृतित्व, हिंदुस्तानी संगीत को अमीर खुसरो की देन, पंडित विष्णु दिगंबर परुस्कर की जिंदगी की कुछ दिलचस्प बातें, कैसे कैसे क्षण, कैसे कैसे लोग, विष्णु दिगंबर परुस्कर का ही एक अन्य रूप में परिचय, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उनके साथ स्वयं का संबंध, सत्संग और शिक्षण, फिर तानसेन, ऑफिस ऑफ इंडियन म्यूजिक, Services of Pandit Vishnu Gamar Paluskar to Indian music. Contribution of Acharya Alauddin Khan to Hindustani music. Art of Abdul Karim Khan. उनका भी बहुत अच्छे ढंग से उनका परिचय वो उसमें आया है. फिर डॉक्टर एस एन रातनजंकर इट ट्रिब्यूट के रूप में रातनजंकर जी के साथ कैसा उनका गुरु शिष्य का संबंध था और आगे संगीत के लिए क्या क्या करने के लिए वो प्रेरणा देते रहे और ये करते रहे उसकी बातें हैं. फिर लोक धुनों से पैदा होते हुए राग, ये आकाशवाणी पर बड़े गुलाम अली के साथ एक साक्षात्कार का वो विवरण है उसमें. फिर यूनुस हुसैन और सुनील बोस के द्वारा ठाकुर साहब से वार्तालाप है, उसमें भी बहुत अच्छी बातों का यानी बहुत विशेष बातों का जिक्र हुआ है. फिर काशीनाथ पांडे द्वारा ठाकुर साहब से जो साक्षात्कार हुआ उसमें बहुत सारी बातें सामने आई हैं. फिर म्यूजिक वर्सेस लिटरेचर, ये तो इतना काम और इतने समय, उसके बाद अंत में जाके जो कुछ उनके नोट्स के रूप में बहुत सारी लेखन सामने आया, तो विशेष विविध स्फुट अभिलेख के रूप में बृहदेशी में से कुछ संदर्भ हैं और ग्रोवर्स डिक्शनरी ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिशियंस और ग्रोवर्स डिक्शनरी बाय W.S. रॉक्स्ट्रो और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक बाय कुर्ट साक्स. इनमें से नोट्स लेते हुए, अपने अध्ययन के लिए मानो नोट्स लिए हों लेकिन वो नोट्स सबके कितने काम आएंगे, इस रूप में उनका बहुत बड़ा एक संग्रह प्राप्त हुआ, वो भी इसमें आ रहा है. उसमें यानी ग्रीस एंड रोम के नोटेशन संबंधी बातें हैं, मिक्सोलाइडियन म्यूजिक, एंशियंट ग्रीक म्यूजिक, पर्शियन म्यूजिक, इजिप्शियन म्यूजिक, स्केल्स ऑफ द ओरिएंट, रिदम नोटेशन, आइडियोफोन्स, ग्रीक स्केल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन माइंड, रिलिक्स ऑफ ग्रीक म्यूजिक, मेलोडी, जेंडर, मोड्स, स्कीम ऑफ डायटोनिक, टेट्राकॉर्ड, स्केल ऑफ टोनिक ए, इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार के गहरे विषयों का और सबके काम आनी चीजों का नोट्स वो लिख कर गए हैं. ये प्रमुख रूप से बात कही गई. उनके लेखों के अध्ययन से जो बात बहन जी के साथ रहते हुए और बाद में भी बहन जी की प्रेरणा के कारण अभिनव भारती पढ़ते हुए जो बातें सामने आईं, वो कैसे ठाकुर साहब उसको सरल शब्दों में कह गए हैं, उसका एक छोटा सा सार कहूँ. जो बात अभिनव गुप्त जी की है किंतु ठाकुर साहब के द्वारा उसको सरल शब्दों में कहा गया और जो मस्तक में बैठ गई है, भारतीय दृष्टि से संगीत में गायन, वादन, नृत्य तथा नाट्य सभी समन्वित हैं. वास्तव में सहज संगीत जीवन का अविभाज्य अंग रहा है. जीवन की ही प्रायः सभी अवस्थाओं, भावनाओं, परिस्थितियों की अनुकृति रूपा अभिव्यक्ति नाट्य में हुई, लोकानुकृति नाट्यम. उस नाट्य का प्रधान अंग संगीत होना ही था, जो शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति को सौगुनी समर्थ बनाने का अप्रतिम माध्यम है, कुछ काकू के द्वारा, कुछ स्वर ताल पद के द्वारा. अब संगीत के तीन पक्ष, स्वर ताल पद आत्मकम संगीतम, उसके भी हमारे यहाँ संगीत हमेशा त्रिविध है. कभी भी अंग्रेजी म्यूजिक केवल इंस्ट्रूमेंटल और वोकल में सीमित हो जाता है, डांस वहाँ अलग रह जाता है, किंतु हमारा अपना संगीत तो नृत्य उसमें समन्वित है. गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, इसके आधार पर वो उसके साथ समन्वित है और उसके समन्वित हुए बिना ये स्वर ताल पद का एक साथ होना संभव नहीं है, क्योंकि नृत्य में ही जाके स्वर ताल पद की एकदम समानांतर न रहते हुए समन्वित एकता हो जाती, सिद्ध हो जाती है. स्वर ताल पद समन्वित होकर नृत्य एवं नाट्य में प्रयुक्त होते हैं. स्वर की अभिव्यक्ति के माध्यम मुख्य दो, शरीर एवं यंत्र. यंत्र भी वाद्य कहा गया, जो बुलवा जिससे मनुष्य बुलवाता है, खुद न बोलकर बुलवाता है. खुद बोलता है तो गायन होता है, और जब बुलवाता है तो वो वाद्य होता है। वाद्य का मतलब ही है जिसके जिसके द्वारा बुलवाया जाता है। वो शरीर से सीधा निकला हुआ स्वर गायन हुआ, उसके सहायक हुए दो, सीधे सीधे सहायक रूप में तत् और अंदर के स्वर को ही बाहर लाने में एक माध्यम बन गया सुषिर, इसलिए तत् और सुषिर प्रधान हुए। उसके बाद जो शरीर के स्वर के अभिव्यक्ति के माध्यम मुख्य दो हुए, सीधे शरीर से निकला गायन, उसके सहायक हुए तत् और सुषिर, उनकी भी लय व्यवस्था, उनकी लय व्यवस्था की तो ताल में आए और ताल के सशक्त माध्यम बने अवनद्ध और घन। इसलिए अपने आगे समस्त वाद्यों को का जो अपने आगे ही क्यों, विश्व भर के भूत और भविष्य जितने भी वाद्य हो सकेंगे वो इन चार के बाहर नहीं जा सकेंगे, जो कि भरत ने पहले ही कह दिया था, तत् सुषिर अवनद्ध और घन, इनके बाहर कभी वाद्य जाएगा ही नहीं। कभी दो का समन्वय भी होगा और कभी स्वतंत्र भी होगा। इन सभी अंग उपांगों में प्रकट होने वाले स्वर ताल को प्रकट आधार देते हैं पद। कभी वो निर्गीत या बहिर्गीत रूप में हैं, लेकिन वो निरक्षर पद हैं, जो झंटुम जगती इत्यादि, जो जिसको इन्हें निरक्षर पद कहा जाता है, इन्हें निरर्थक पद हैं, उनका अपना अर्थ कुछ नहीं है, किंतु अपने अपने स्पंदनों के द्वारा ही वो बहुत कुछ कह रहे हैं। कभी काकू द्वारा पद कहता है, लेकिन अपने संवेदनों के द्वारा ये निरक्षर पद कहते हैं, शुष्काक्षर कहलाते हैं। वो अपने संवेदनों के द्वारा बहुत कुछ कह जाते हैं। तो पद, अब पद और तनु दो आधार बने संगीत के, त्रिविध संगीत के, पद और तनु। तनु व्यक्त हुआ नाट्य और नृत्य में, लेकिन उसको किसको व्यक्त कर रहा है, कर रहा है किसी न किसी पद को ही, ना अर्थात काव्य को, किसी न किसी काव्य का भी आधार होता है नाट्य और नृत्य दोनों का ही। अब पद और तनु जो अनुभाव विभाव संचारी भावों के द्वारा स्थाई भाव से रस निष्पत्ति कराते हैं। आखिर संगीत माध्यम है सच्चिदानंद के आनंद पक्ष को व्यक्त करने का। तो आनंद पक्ष व्यक्त होता है पद और तनु के द्वारा। ये तनु बना साधन तो नाट्य और नृत्य में उसने स्वर और ताल को साथ लिया, तब कहीं जाके नाट्य पूरा हुआ, तभी कहीं जाके नृत्य पूरा हुआ और संपूर्ण लोक ही किसी नटराज की अभिव्यक्ति है, तो नटराज का नटरूप संगीत को लेकर ही प्रकट होता है और नटराज से ही संगीत प्रकट होता है। इस प्रकार जीवन की प्रत्येक दशा का उत्तम, सरस और रंजक अभिव्यक्ति देने वाला संगीत पहले व्यक्तिगत श्रेय प्रेय स्वांता सुखाय और प्रियता का आधार बना, फिर लोकरंजन का साधन बना नाट्य और नृत्यादि के द्वारा। इधर जहां स्वांता सुखाय था तो गांधर्व और मार्गी रूप में था, फिर मार्गी और देशी हुआ। गांधर्व के दो प्रकार के उपयोग हुए, एक गांधर्व केवल देवाना महाराजक रूप में जो यज्ञ का ही अंग था और के पूर्णतः स्वांता सुखाय था, और स्वांता वो सीमित स्वांत नहीं अपितु असीम स्वांत के सुख के लिए था। फिर वो गांधर्व शब्द का ही उपयोग गंधर्वानाम भव इस रूप में जब गांधर्व का उपयोग हुआ तो संगीत मात्र के लिए गांधर्व का उपयोग होने लगा, और वो गांधर्व शब्द केवल गायन के लिए नहीं था, केवल वादन के लिए नहीं था, केवल नृत्य के लिए नहीं था, वो तीनों को साथ लेते हुए चलता था। इसलिए पुराणों में और अन्यत्र भी जहां जहां प्राचीन ग्रंथों में वहां गांधर्व हो रहा था, इस प्रकार की जो उक्तियां आती हैं वहां गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तीनों साथ साथ आ रहे हैं, इसलिए गांधर्व तीनों संपूर्ण संगीत का वाचक शब्द बन गया था। गांधर्व का विशिष्ट अर्थ और गांधर्व का सामान्य अर्थ, दोनों अर्थ में गांधर्व शब्द का उपयोग होने लगा। फिर क्रमशः इसका शैलीगत विकास हुआ। पहले गायन वाद्य और नृत्य भी, नृत्य थोड़ा बाद में आया है, कि गायन और वाद्य पहले इन दो रूपों में ही था केवल, या तो वो यज्ञ के लिए है या वो मन को खोलने के लिए है। उसके बाद और नाट्यशास्त्र में तो संगीत का स्थान, संगीत का भी और साहित्य का भी स्थान ही नाट्य के अंग के रूप में ही आया है। बाद में चल के क्रमशः अधिक अधिक इनका इनके स्वतंत्र साधना और स्वतंत्र प्रयोजन स्वतंत्र प्रयोग इनके होने लगे और तब शैलियों का विकास हुआ। तो शैलीगत विकास हुआ और प्रयोजनगत ह्रास होने लगा। ज्यो ज्यो शैलीगत विकास होता गया त्यों त्यों प्रयोजनगत ह्रास भी होता गया। संगीत वर्तमान दशा में पहुंचा है। इस शैली का विकास बहुत कुछ मूल शुद्धता के ह्रास पर ले आया है। प्रयोजन में श्रेय का प्रायः लोप एवं प्रेय की अतिशय वृद्धि हो गई है। इसी प्रेय प्रवणता की अशुद्धि यानी उसको आजीविक साधन मात्र बना लेने के कारण संगीत का जो प्राचीन स्थान था जहां वो साम तीनों वेदों में भी उत्तम स्थान था जिस साम का वो संगीत को आजीविका का साधन बना लेने के लिए जाने के कारण निम्न स्थान में आ गए यानी गायक वादक नर्तक जरा समाज से नीची श्रेणी में देखे जाने लगे थे। उसको नीचे ले आया था क्या प्रयोजन का ह्रास। किंतु जो लोक में अधिक होता है वही प्रमाण बन जाता है। इसलिए जो संगीत अपना उत्तम स्थान और स्तर खो चुका था संगीत के को उपजीवी संगीतोपजीवी समाज में निम्न श्रेणी में गिने जाने लगे थे उस संगीत को पुनः सम्माननीय स्थान सम्माननीय बनाने का उपक्रम प्रारंभ किया पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। उस सम्मान को शिखर तक पहुंचाया था पंडित ओंकारनाथ ठाकुर एवं फैयाज खां बड़े गुलाम अली खां जैसे लोगों ने। उधर मूल डागर बंधुओं ने भी वहां डागर बंधुओं में और बड़े गुलाम अली खां साहब में फैयाज खां में भी संगीत की जो साधना थी वो वहां प्रयोजन था और प्रयोजन उत्तम प्रयोजन था। इसलिए बड़े फैयाज खां साहब के बहुत सारे संस्मरण ठाकुर साहब ने लिखे हैं उससे जान पड़ा। उतना नहीं जानते थे लेकिन फिर इससे और जान पड़ा कि ये बड़े गुलाम अली खां भी और फैयाज खां भी खास तौर से ये लोग संगीत को सचमुच में साधना के रूप में ले रहे थे और संगीत में ऐसे खोए थे कि उनको दिन दुनिया की होश नहीं थी। और इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि एक बार खुद सुनने नहीं जा सके किसी कारण से बीमार थे और खुद सुनने नहीं जा सके थे लेकिन इच्छा थी कि यानी उसी दिन उनका होने वाला था। इनकी तबीयत खराब थी फैयाज खां साहब का गायन होने वाला था और ठाकुर साहब की तबीयत खराब थी नहीं जा सकते थे तो अर्ज किया कि आज आ नहीं सकूंगा तो उन्होंने अपना गाना टाल दिया और दूसरे दिन रखवा लिया कि रसिक जिसको असल में रस है वो नहीं आ सकेगा तो आज हम गाएंगे ही नहीं। और एक बार वो कुछ गा रहे थे तो इनको कहीं जाना पड़ा सहज सहज अभ्यास कर रहे थे तो रात भर कहीं दूसरा कहीं काम करके लौटे तो देखा अभी वही का वही आलाप चल रहा है और उस आलाप में इतनी यानी इतने खोए थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि कितने घंटे बीत गए हैं। इस प्रकार की उनकी साधना थी। और भी उन्होंने एक बार प्रसंग लिखा है जिसमें एक बार एक यानी किसी स्टेशन पर किसी कहीं कहीं जा रहे थे वो कहीं पर किसी बड़े घर में किसी विवाह के उत्सव में फैयाज खां साहब का गायन रखा गया था और उस समय जमींदारों के ऐसा होता था कि उसी बहाने सब लोग सुन सकें इसलिए सबके सुनने का आयोजन था। उसी में एक वहाँ के स्टेशन मास्टर थे उन्होंने सुना बड़े मुग्ध हो गए कि उनके मन में भाव आ गया कि काश मेरी बेटी के विवाह में भी फैयाज खां साहब आए। उन्होंने ठाकुर साहब से अर्ज किया कि मेरी बेटी के विवाह में भी इनको बुलवा दीजिए। तो ठाकुर साहब ने उनको बहुत समझाया वो छोटे से स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे बहुत सामान्य दशा के थे व्यक्ति थे। इन्होंने समझाया कि ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इनका तो सबको लेके आने में ही जितना जितना केवल आने भर में जितना व्यय होगा उतना भी आप नहीं दे पाएंगे तो कैसे इनको बुलाया जाए। पर उनके मन में इतना आ गया था कि नहीं मुझे तो सुनना है अपनी बेटी के विवाह में इनको जरूर बुलाना है। जाके उन्होंने फैयाज खां से सीधे अर्ज कर दिया और बिल्कुल बहुत ही सामान्य स्थिति के व्यक्ति थे वो। फैयाज खान साहब ने जब सुना कि इनकी इतनी इतनी भावना है इनको संगीत में इतना रस आ गया है कहा कि हाँ हाँ हम आएंगे और वो पहुँचे अपने पूरे अमले फैले के साथ पहुँचे और लेने का दूर बेटी के लिए बहुत कुछ दे के और खूब भरपेट संगीत सुना के वो आए। तो वो उनके चित्त में ये नहीं था कि कहाँ जहाँ से अर्जन होगा वहीं गाएंगे अर्जन नहीं होगा तो नहीं गाएंगे ऐसा नहीं था। ऐसे ही बड़े गुलाम अच्छा फैयाज खां साहब भी और बड़े गुलाम अली साहब भी संगीत कैसे लौकिक सीमाओं से ऊपर उठा देता है इसके साक्षात उदाहरण थे। वे जब भजन गाते थे और पद गाते थे तो कहाँ, तो किसी ने एक बार पूछा कि इन श्री कृष्ण लीला के पद, जब बड़े गुणा लिखा सब गाते थे, किसी ने उसे एक बार पूछ दिया, इन पदों को आप इतने रस से कैसे गा पाते हैं? कहा कि अरे हम गाते हैं और उसके लिए गाते हैं जिसने संगीत हमको दिया है। यहाँ यहाँ ये छोटी सीमाएं कहाँ से आई? अगर संगीतकार है तो सीमा सीमित हो ही नहीं सकता। ये बड़े गुलाम अली खान साहब के शब्द थे। संगीत ही सारे विश्व की एकता करने का एकमात्र साधन है, उसमें छोटी छोटी बाधाएं कहाँ से आएंगी? और ये डागर साहब, डागर बंधुओं से भी साक्षात उनके द्वारा भी जाना और बहन जी के द्वारा भी जाना, साक्षात भी जाना, सब डागर बंधु एक साथ एक स्टेज पर आ गए जब बहन जी ने ध्रुपद सम्मेलन शुरू किए थे। ठाकुर साहब भी कभी कभी वहां आए थे तो ठाकुर साहब ने बहन जी से कहा कि ये एक मिसाल है कि हम चारों भाई जो कभी भी एक दूसरे का संगीत सुनने तक नहीं जाते थे, आज एक एक साथ बैठे एक स्टेज पर गा रहे हैं, बजा रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। और खासतौर से बड़े अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने भी ऐसे घुल मिल कर रहते थे जैसे लगता ही नहीं था कहीं कोई बाधा भी है, किसी प्रकार की उनको सीमाएं नहीं थी। और यह सब क्यों संभव होता था? कि वो लोग संगीत में, वास्तव में संगीत में रचे पचे थे। तो वहाँ संगीत का उत्तम रूप देखने में आता था जो सच्चे कलाकार थे। लेकिन जब सच्चा कलाकार केवल धरती पर, तथाकथित धरती पर उतर आता है, वो धरती नहीं है वास्तव में, पर तथाकथित धरती पर जब उतर आता है तो उसकी दशा ये हो जाती है कि वो संगीत भूलकर पैसा ही देखने लगता है। इसीलिए अब वापस संगीत, जो सम्मान विष्णु दिगंबर भास्कर जी ने दिलवाया, जिस सम्मान को इन सब बड़े बड़े सच्चे कलाकारों ने, मौजुद्दीन खां, अब्दुल करीम खां, इन सब ने जिस स्तर पर संगीत को अनुभव किया, वो अनुभव खोकर अब कहाँ चला आया है। उसी संगीत का विकार, उसके विकृत रूप को पुनः पुनः तनुस्तरीय आजीविका का उत्तम साधन बनाकर उसी स्तर के यश को, यश या अपयश यही जाने, उसी स्तर के यश को अपना उद्देश्य बनाए हुए है। तो ये संगीत का विकास है या ह्रास है, इसको समझने वाले ही समझ सकते हैं। मुझे समय का भान नहीं है, आप भान दिला दीजिएगा। और यदि इस विषय में, यानी जो नहीं, बहुत कुछ नहीं कहा गया है, यदि कुछ जिज्ञासा हो तो शायद कबीरा जी उसका उत्तर दिलवा देंगी। नहीं 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 नहीं, केवल केवल संगीत कर्नाटक भी है और ये अरबी संगीत भी है, अरबी भी है। ये संगीत पूरे विश्व भर में, भारतीय मूल का संगीत कहाँ कहाँ है? अच्छा, उनका भारत ये छोटा भारत नहीं है। ये भारतीय संगीत जब कहा जाता है तो भारत का मतलब बृहत्तर भारत है, अथवा सब संपूर्ण एशिया भी है। उन्होंने जब संगीत की बात कही है तो वो बृहत्तर एशिया को लेते हुए कही है, और कम से कम बृहत्तर भारत, भौगोलिक बृहत्तर भारत को लेते हुए तो कही ही है। जो नाट्य शास्त्र में संगीत है वो छोटे भारत का नहीं है, उसमें कंबोज और अफगान और सबके सब शामिल हैं, उधर बर्मा भी शामिल है, उधर वो भी शामिल है, उधर अति पूर्व भी शामिल है और अति पश्चिम भी शामिल है, अति उत्तर भी शामिल है। तो वो लेते हुए, वो बेहतर भारत अथवा संपूर्ण एशिया को लेते हुए बात है। और पाश्चात्य संगीत का भी विशेषण कभी कभी बीच में आया है, ये नहीं कि वो छूट गया हो, वो भी आया है। और उनके साथ, इसलिए मैंने वो जो उनके नोट्स हैं उनकी जानबूझ के पढ़ के इसीलिए सुनाए थे, उस पर भी बात आई है, और उनके साथ अपने संगीत के समन्वय की भी बात आई है। छियासी में, 27 मई, और 93 में उनकी शताब्दी मनाई गई थी, वो भी बहन जी के द्वारा ही एक आयोजन हुआ था, उसमें विशेष अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में। और वो योगायोग की बात है कि जो बहन जी ने प्रारंभ किया, बहन जी के साथ रहते हुए इन दोनों पुस्तकों के मैं प्रूफ संशोधन में और इसके संयोजन में ये बालिका साथ में थी, और उनके बाद उन्हीं के कार्य को पूरे करते हुए अब मैं जी रही हूँ। तो उनके प्रारंभ किए हुए काम ही अब पूरे किए जा रहे हैं। जैसे उसका मैंने सुनाया, ऐसे यदि इसका भी आप कहें तो इसके भी विषय सूची सुना दूं, तो उससे पता लगेगा कि कितना विस्तार था उनके लेखन में। भारतीय संगीत के आदि प्रेरक, सिंधु सभ्यता के काल में भारतीय संगीत, फिर वैदिक काल, संहिता काल, ऋक, अथर्व और यजुष का काल, प्रातिशाख्यों का काल, फिर उस समय के उदात्त स्वरित का वर्तमान अथवा बाद में आए संगीत के साथ संबंध, ऋग्वेद में संगीत विषयक सामग्री, स्वर, तत्वाद्य, अवनद्ध वाद्य, दुंदुभि, घनवाद्य, सुषिर वाद्य, यजुर्वेद में संगीत, फिर सामवेद का जो हमेशा, यानी उत्तम, जब भी उत्तम का वर्णन करेंगे, वेदानाम सामवेदोस्मी, जब भी उत्तम का वर्णन होगा तो वेदों में साम की बात आती है, वो साम की उत्तमता क्या है इसके विषय में बात की है। फिर साम संहिता के आर्चिक और गान ग्रंथों का संबंध है, साम की शाखाएं हैं, सामवेद के भाग हैं, सामवेद का ग्राम क्या था, सामवेद के स्वर और उनके नाम किस आधार पर थे, जो सप्तनाम है कृष्टादि, सामवेद और लौकिक स्वरों की समता, सामवेद के स्वरों का स्वरूप, वो गा के भी कभी कभी सुनाते थे, वो उनके कैसेट्स में मुझे भी सुनने को मिला, साम सप्तक के स्थान, श्रुति जाति, साम के विकार, वो जो हुम और हिम और आम, ये स्तोभाक्षर लगाए जाते हैं उनकी बात, फिर साम संहिता पाठ और साम गेय पाठ, संहिता पाठ और गेय पाठ दो रूपों में है। अच्छा, ये जो बाद में आलाप की बात आई है और पद के पदरूप के साथ अर्थ के साथ संबंध न रहकर और उसके गेय रूप की प्रधानता जो हो गई है, उसका साम का आधार कैसा है, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। साम की भक्तियों का आध्यात्मिक महत्व, भक्ति का मतलब महत्व विभाग है, भक्ति का मतलब वो डिवोशन नहीं है, विभाग है। तो साम की भक्तियों का आध्यात्मिक महत्व, वैदिक ज्ञान गान के साथ वीणा वादन, तथ का हमेशा गायन के साथ जोड़ गठबंधन रहा है, और सुषिर स्वतंत्र रहा है, क्योंकि सुषिर में आकाश तत्व प्रधान है, वायु और आकाश प्रधान है, और बाकी में पृथ्वी तत्व आ गया है। वैदिक गान के साथ वीणा वादन, गात्र वीणा, साम की प्राचीन स्वरलिपि, साम संगीत के कुछ पारिभाषिक शब्द, साम के छंद और लय, छंद लय का दार्शनिक आधार, साम गान मूर्छना, जाति और राग का आधार, गात्र वीणा का स्टाफ नोशन, गात्र वीणा और साम की जो स्वरलिपि थी उसका स्टाफ नोशन, वो स्टाफ नोशन नोटेशन का आधार कैसे बना है, ये स्पष्ट किया है। कहने को कहा जाता है कि नोटेशन विदेश से प्रारंभ हुआ, उसका अनुकरण भारत में किया गया, ऐसा नहीं है। स्वरलिपि बहुत पहले से साम की स्वरलिपि रूप में विद्यमान थी, उसका विकास हुआ, और ये तो फिर संगीत कलाधर में भी भावभट्ट ने प्रकट किया है। वैदिक काल में संहिता काल के संगीत का उपसंहार, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और सूत्रकाल में संगीत, फिर प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ यानी उच्चारण के ग्रंथ। यहाँ हमारे यहाँ शिक्षा शब्द का अर्थ, शिक्षा ग्रंथों का अर्थ उच्चारण का विज्ञान है, न कि केवल एजुकेशन। फिर याज्ञवल्क्य शिक्षा, मांडुकीय शिक्षा, नारदीय शिक्षा, नारद देवर्षि और नारद संगीत वाले, इन दोनों का संबंध, फिर नारदीय शिक्षा का काल, फिर स्वर के तीन स्थान, स्वरों का प्रियत्व और जगत का सामोपजीवित्व, जगत कैसे साम पर ही जीवित है, इसका संबंध, इसका विवरण, स्वरों की तारता का निर्धारण, विभिन्न स्वरों का उत्पत्ति स्थान, उनका नामकरण, वृत्ति या लय, प्राचीन काल में वृत्ति शब्द था, बाद में लय शब्द आया है, उदात्तादि में लौकिक स्वरों का अंतर्भाव, स्वरों के अधिष्ठात्री देवताएं, जब पौराणिक प्रभाव आया तो अधिष्ठात्री देवताएं स्वर के साथ जुड़ी हैं, श्रुति जाति और केवल श्रुति, नारद का स्वर मंडल, गीतालंकार और नारदी शिक्षा की मूर्छनाओं का विश्लेषण, नारदी शिक्षा के ग्राम राग। नारदी शिक्षा में राग शब्द और ग्राम राग का अर्थ, ग्राम राग का नामकरण और विकास, ग्राम राग के नामकरण का कारण और उनका विकास। फिर नारदी शिक्षा में स्वर वर्ण, गान के गुण दोष। ये गुण दोष भारत में भी आए हैं, लेकिन भारत नाट्यशास्त्र तो स्वयं ही वो कहते हैं संग्रहात्मक है, और हमारे यहाँ ये विशेष वैदिक काल से लेकर पुराण में भी और बाद में भी चलकर ये भारतीय विशिष्ट परंपरा रही है। कभी भी किसी ज्ञान को अपने नाम के साथ सीमित नहीं किया गया, हमने सुना है कह के ही कहा जाता है, हमेशा हमने सुना है। इति सुषुम धीरा नाम ये न व्यत चक्षिरे, इस रूप में उपनिषद भी कहा गया, वही रूप आगे पुराण में भी बढ़ा है, वही रोग सच्चे विद्वानों ने भी रखा है। कभी ये नहीं कहा ये मेरी बात है, ये हमने सुना है। वैदिक काल में संगीत का अन्य देशों से आदान प्रदान, मेसोपोटामिया आदि देशों से आदान प्रदान, इजिप्ट मिश्र से आदान प्रदान। फिर इतिहास काल यानी रामायण और महाभारत का काल, उसमें पहले रामायण, रामायण की विशेषता, रामायण का काल, रामायण में सांगीतिक विषयों का उल्लेख, गांधर्व गीत आतोद्य गीत वाद्य नृत्य का सर्वत्र प्रचार, समाज बाद में आज समाज कहलाता है, जो संगीत संबंधी एक यानी ग्रुप होते हैं उनको आज वहाँ समाज होगा, आज वहाँ समाज गायन है, ये जो कहा जाता है वो समाज शब्द कितना प्राचीन है। व्यवसायी गायक कुशीलव, वो कुशीलव से कुशीलव तक पहुँच गए। फिर पाठ्य गेय प्रमाण और सप्त जाति, ये रामायण में विद्यमान है। षड अलंकार प्रमाण सप्त जाति तंत्री लय समन्वय, स्थान मूर्छना मार्ग संगीत, करण वीणा वेणु वंश शंख दुंदुभि भेरी मृदंग पणव पटह डिंडिम मड्डुक मुरज मृदंग चेलिका, प्रमाण लय ताल समताल कला मात्रा शम्या। बाद में चल के संगृहित हुए हैं अपने भरतनाट्य शास्त्र में, उनके बाद रामायण में पड़ी हुई है कला मात्रा शम्या। फिर महाभारत काल में भी महाभारत नामकरण का आधार, महाभारत में संगीत, सप्तस्वर का उल्लेख, वेदगान, यज्ञोत्सव के साथ नृत्यगान, यज्ञोत्सव के समय नृत्यगान, सामाजिक जीवन और उत्सवों में संगीत का स्थान, गंधर्वों के अतिरिक्त अन्य गायक, महाभारत काल में प्रयुक्त मुख्य वाद्य। फिर हरिवंश, यहाँ से पुराण का प्रारंभ है एक प्रकार से, वो ये महाभारत का वो परिशिष्ट है, किंतु वहीं से पुराण शैली का प्रारंभ भी है, थोड़ा पुराण पहले से भी चले आ रहे हैं साथ साथ। महाभारत और हरिवंश, हरिवंश का काल, हरिवंश में प्राप्त संगीत संबंधी सामग्री, नृत्य गीत और वाद्य तीनों का प्रचार, ग्राम राग, हल्लीसक और छालिक्य। हल्लीसक और छालिक्य दोनों का नाम मालविका अग्निमित्र में कालिदास ने भी लिया ही है। पुराणों में संगीत, पुराण शब्द, पुराणों का प्रादुर्भाव, स्वरमंडल, वायु पुराण में दी हुई ताने, गीतक, मार्कंडेय पुराण में गीत, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में संगीत, विष्णु धर्मोत्तर में संगीत विषयक समस्त सामग्री, तान गीत वृत्ति रस लय चोक्षा प्रयोग, जाति लक्षण, अलंकार गीतक आतोद्य ताल वृत्ति लय का समन्वय, अवनद्ध वाद्य इत्यादि। फिर पाणी निकालना है, पाणी की अष्टाध्यायी में संगीत, जैन वाङ्मय संगीत, स्थानांग सूत्र जो पाली प्राकृत में है उसका मूल नाम है स्थानांग सूत्र। फिर संगीत शास्त्र की कुछ प्राचीन महाविभूतियां, ये अधिकतर पौराणिक हैं, किंतु बाद में चल के भरत के समय तक उसमें तो ये ब्रह्मा शिव नारद और स्वाति और तुम्बुरु तक तो माने जा सकते हैं पौराणिक हैं। उसके बाद तो फिर कोहल शांडिल्य दत्तिल विशाखिल विश्वावसु अर्जुन, ये दोनों के बीच में है। नाट्यशास्त्र के पूर्व काल में जनजीवन में संगीत का स्थान, यज्ञशाला मंदिर रंगमंच और राजप्रसाद, ये चार, इसीलिए चार प्रकार के संगीत का आगे आगे बढ़ता चला रूप। फिर नाट्यशास्त्र का विश्लेषण है, उसमें नाट्यशास्त्र का अंतःसाक्ष्य है, नाट्यशास्त्र का संकलन और संग्रहात्मकता कैसे हुई है, नाट्यशास्त्र उसकी टीकाओं पर बात है। फिर भट्ट उद्भट, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, भट्ट यंत्र, अभिनव गुप्त, इन सब पर अपना अभिमत कहा है, उनके विषय में बात कही है। फिर नाट्यशास्त्र के संगीत की विशेष रूप से बात, गांधर्व संगीत की विशेषताएं, स्वर संबंधी प्रस्ताव, पद संबंधी प्रस्ताव, ताल संबंधी प्रस्ताव और प्रस्तार, वादी संवादी विवादी, ग्राम श्रुति जाति, श्रुतियों की सिद्धि, फिर सारणाएं मूर्छनाएं, षड्ज ग्रामिक और मध्यम ग्रामिक, गांधार ग्राम लुप्त हो चुका है, फिर एक ग्राम की मूर्छना का दूसरे ग्राम की मूर्छना में परिवर्तन, मूर्छना से आश्रित तान, षड्ज ग्राम की 28 शाडव ताने, मध्यम ग्राम की 21 शाडव ताने, षड्ज ग्राम की औडू ताने, मध्यम ग्राम की औडू ताने, मूर्छना और तान का प्रयोजन, इन तानों की विशेषता, साधारण स्वर, साधारण जाति, साधारण स्वर, साधारणत्व के अन्य प्रकार, साधारण तथा अंतर स्वर का प्रवेश प्रयोग, जातियों में स्वर साधारण का उपयोग, शुद्ध और विकृत जातियाँ, फिर संपूर्ण और असंपूर्ण जातियाँ, जातियों के अंश स्वर, जाति की परिभाषा, जाति के दश लक्षण, अंश के लक्षण, मंत्र तार मंत्र, मंत्र गति, न्यास स्वर, न्यास स्वर की परिभाषा, न्यास अपन्यास, संन्यास विन्यास, अंतर मार्ग, जातियों के कुल अंश स्वर, ग्रह स्वर, अपन्यास स्वरों की बात, शाडवित औडवित की बात, विभिन्न जातियों के लक्षण इत्यादि इत्यादि, इतने विस्तार में इस ग्रंथ में गए हैं। और इस ग्रंथ में तो फिर वो संगीतकारों पर असल में उतर आए हैं, इसलिए सिद्धांत की बात कम कहते हुए और संगीतकारों की बात अधिक कही है। और अधिकांश इन्हें, जैसे मैंने बताया, 370 से ऊपर, 370 मुख्य मुख्य हैं, 370 से ऊपर भी संगीतकारों की बात इसमें आई है, जैसे प्राचीन से लेकर और नवीन तक। नवीन यानी बहुत नवीन तो नहीं, हाँ तो भी उनके समय से कुछ पहले तक के लोग, जो अप्रसिद्ध लोग हैं उनकी बात ज़्यादा इसमें है, प्रसिद्ध लोगों की कम है। समय हो गया होगा जी, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं,
बात नहीं, मेरी आवाज वहां तक जाएगी इसकी समझ।
हाँ जी,
आपका परिचय कराऊं, आप बहन जी की शिष्या हैं, आप डॉक्टर सीता बिमरा, और गुरु नानक के ग्रंथ साहब का संगीत संबंधी आलोचन अध्ययन आपके थीसिस का विषय रहा है, जो बहन जी के अंडर आपने किया था,
हिंदी के
वैसे हिंदी की
ये विषय रहा मेरा,
इतना ही मैं जानती हूँ, आगे आप बताइए
जी। आपने जो संगीतज्ञ हैं उनके, ठाकुर साहब के साथ जो साक्षात्कार हैं
जी,
उन सब के संदर्भ में बताया, तो क्या आपको इस खोज में कहीं ऐसा मिला कि पंडित दिलीप चंद्र वेदी जो हैं, तो हमारे गुरुजी,
हाँ जी, हाँ
तो
जी।
उनका ठाकुर साहब के साथ भी काफी संबंध रहा है, गुरुजी ने भी बताया, और जब 1964 में मैं बनारस गई थी
जी, जी।
और ठाकुर साहब से मिली,
हाँ,
तभी वो मुझे मिले और उन्होंने ये कहा कि वेदी साहब से सीख रही हो,
हाँ।
छोड़ना मत,
हाँ, हाँ।
लेकिन कोई भी उनका मंचों पर नाम भी नहीं लेता है,
हाँ।
और मैं
और ये भी बात है कि लेखन में भी नहीं आया,
हाँ जी,
ये आश्चर्य की बात है,
हाँ जी,
ये आश्चर्य की बात है,
इसलिए सोच रही,
अथवा तो ये है कि उनके साथ जब जब कभी साक्षात्कार हुआ होगा उसका रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिला,
हाँ जी,
क्योंकि हमने जो कुछ ये सब बात कही वो जो जो रिकॉर्डिंग मिली उसके आधार पर कही, उसी के आधार पर
सिंह बंधु हैं, डागर साहब हैं,
हाँ।
तो जिनसे भी मेरा भेंट होती है वो सभी ये कहते हैं कि वेदी साहब से सीखा, कैसा सौभाग्य रहा है, और मैं हैरान हूँ कि किन्हीं भी संगीत के संबंधित, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष दोनों के ही वे बहुत ही जानकार थे और पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन उनका कोई नाम ही नहीं लेता और कोई कहीं संस्मरण तक नहीं आ पाता।
तो क्या आप में, हाँ। ये तो मैं मेरी जिज्ञासा है कि आपके पास उन दोनों के संबंध के कुछ कैसेट या कोई लिखित रूप है?
मेरे पास लिखित रूप में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही संगीत के साथ ही साहित्य का जो गठजोड़ होना चाहिए,
हाँ,
मैं उस तरफ बढ़ गई थी,
उसमें आप आगे बढ़,
हाँ, और हिंदी के जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं जो कि वाग्गेयकार भी थे,
हाँ, हाँ, हाँ,
तो मैं उस ओर बढ़ गई, इसलिए मैंने इस तरफ अनुसंधान नहीं,
हाँ, क्योंकि बहन जी भी वेदी साहब की बात बहुत कहती थी
जी,
पर वही बात है कि लिखित में नहीं आ पाया,
हाँ जी,
लिखित में नहीं आ पाया सचमुच में। इसलिए कोई कैसेट अगर होता किसी प्रकार का उनका होता, क्योंकि संजय को जितना मालूम था जहां जहां मालूम था वहां वहां गए उन्होंने संग्रह करके लाए, किंतु बेदी जी की बात नहीं आ पाई।
अभी संगीतकारों का एक कोष जो है वो संगीत कार्यालय हाथरस से वो लोग छाप रहे हैं, तो मैंने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि उसमें हमने उनका दिया है,
उसमें दिया है, कोष में दिया
है।
धन्यवाद। हाँ, इसमें मैंने इंडियन म्यूजिक में देखा नहीं कि दिलीप चंद बेदी है कि नहीं, इसको मैंने मतलब मुझे ध्यान नहीं है, देख लूंगी तब देखूंगी।
ये दिलीप सिंह बेदी जी के बारे में मैं इतना जोड़ना चाहूंगा कि गंधर्व महाविद्यालय में जो फाउंडर प्रिंसिपल थे भाई जी, वो उनको आमंत्रित किया करते थे और उसमें मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी थी और उनके दो तीन शिष्या भी थे उस समय, उनके थ्रू उन्होंने गवाया भी था, तो कुछ मेटेरियल शायद गंधर्व महाविद्यालय जो राउज एवेन्यू में है वहां पर बेदी साहब के बारे में उपलब्ध जरूर होगा, मेरा ऐसा ही ख्याल। थैंक यू।
जी इसमें हाँ ये बात सही है आपकी, मेरा ध्यान नहीं है क्योंकि जो पढ़ने में आया उसमें लोक संगीत की, हाँ एक आध लेख में लोक संगीत का बात आई तो है लेकिन बहुत एक आध लेख में ही आई है, एक आध लेख में आई तो है बात, छूटा नहीं है, कोई भी विधा छूटी नहीं है, हाँ लोक संगीत की थोड़ी बात आई है पर ज़्यादा जोर तो संगीत उसी पर है, ज़्यादा जोर उसी पर है, बात तो जब सिनेमा तक की आ गई है तो लोक संगीत कैसे छूटेगा। इति
मैडम डॉक्टर उर्मिला शर्मा को सुनने का अवसर मिला, अभी बात सौभाग्य की और भाग की हो रही है तो अभी मैडम ने कहा कि मेरा सौभाग्य और मेरा दुर्भाग्य रहा कि उनसे ना मिले और उनसे चर्चा नहीं हुई, तो ये आज का दिन मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य का दिन, मेरे बड़ी खुश नसीबी का दिन है कि आप जैसी विद्वान जो संगीत में दुनिया लग रही है मुझे, इतनी गहराई और इतना ज़्यादा अथाह समंदर संगीत में शोध के लिए रिसर्च के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी तक किसी को नहीं सुना, इतना मैं भी 20-25 साल से संस्थान में हूँ लेकिन आपकी उम्र के हिसाब से आपका ज्ञान भी उतने ही बुजुर्ग हो चुका है, उतना ही गहरा हो चुका है जितनी आपकी उम्र है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मेरे पास जबान और दिल नहीं है इनकी शुक्रिया अदा करने का, वो मैं नहीं ला सकता, मैं जो भी फील कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, झुक के कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ कि मैडम आई हैं और मेरे संस्था का भाग उज्जवल हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, ये मैं भूलूंगा नहीं और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मैडम को और दिन ब दिन उम्र में दराज करे और बड़ी हों ताकि हम लोग और भी सीख सकें और फिर उनको बुलाने का हमको अवसर मिले। दूसरी हमारे गरे खान साहब जो सदर हैं, सदर मोहतरम हैं म्यूजिक में, मुझे अब समझ में आया, सुना तो था मैंने कि बहुत रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसे मौसम में और ये छोटे से इसमें हम लोग के इसमें आए हैं मैं बोल नहीं सकूंगा, इन्होंने जो रौनक बढ़ाई है महफिल की आकर के तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गरे खान साहब का, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब का कि हमेशा प्रोत्साहन करते रहे, हमेशा हम लोगों का हौसला अफजाई बढ़ाते करते रहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम कीजिए, वो प्रोग्राम कीजिए, वो प्रोग्राम कीजिए, जब से आए हैं तब से कंटिन्यू हम लोगों को इंकरेज करते रहे हैं कि आप लोग कुछ रिसर्च का काम, कुछ डिबेट का काम, कुछ डिस्कशन का काम बराबर कीजिए, ये मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरे तमाम लोग जो तशरीफ लाए हैं, बड़े बड़े लोग दूर दूर से इस मौसम में, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दूसरे तमाम साथियों का भी और एजेंसी के SMS का भी और दूसरे तमाम मीडिया सेंटर का और लास्ट में मैं अपने HOD साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं जमानत दे रहा हूँ एक प्याली चाय की, आप लोग तशरीफ ले चले एक प्याली चाय। थैंक यू मैडम।